फिर अगला अमल देखिए, सच बोलना और झूठ से बचना। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैकुम बिस्सिद्क़ फ़इन्न सिद्क़ यहदी इलल बिर्री वइन्नल बिर्र यहदी इलल जन्नति वमा यज़ालुर रजुलु यस्दुकु व यता हर्रस सिद्क़ हत्ता युक्तब इंदल्लाहि सिद्दीक़न वइयाकुम वल कज़िब फ़इन्नल कज़िब यहदी इलल फुजूरी फ़इन्नल फुजूर यहदी इलन नार वला यज़ालुर रजुलु यक्ज़िबु व यतहर्रल कज़िबा हत्ता युक्तब इंदल्लाहि कज़्ज़ाबा। सच को लाजिम पकड़ो, बिला शुबा सच नेकी की तरफ ले जाता है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। और आदमी हमेशा सच बोलता रहता है और सच बोलने की कोशिश करता रहता है, हत्ता कि अल्लाह के यहाँ सिद्दीक लिख दिया जाता है। और झूठ से बचो, झूठ बिला शुबा गुनाह की तरफ ले जाता है और गुनाह दोजख की तरफ ले जाता है। और आदमी हमेशा झूठ बोलता रहता है और झूठ बोलने की कोशिश करता रहता है, हत्ता कि अल्लाह के यहाँ कज़्ज़ाब लिख दिया जाता है। मुस्लिम की रिवायत 2607। और इससे क्या पता चलता है कि हमेशा सच बोलें, इसका तो एक ही खुलासा रख लें। कैसे जन्नत की तरफ ले जाता है सच? क्योंकि देखिए, सच बोलने में कामयाबी है और कामयाब लोग जन्नत में जाएंगे। जब आप सच बोलते हैं तो उसके साथ ही पिछले गुनाह तो माफ़ हो जाते हैं, क्योंकि उसको पता है कि अगर इसने कोई गुनाह का काम किया और किसी ने पूछ लिया तो सच बोलना पड़ेगा, और सबको मेरे गुनाह की खबर हो जाएगी और गुनाह की बात में ज़िल्लत और रुसवाई है। वो वाक़या सुना वह एक शख्स का जो नबी सल्लम के पास आया और बहुत सारे गुनाहों का जिक्र किया, जिसमें शराब जिना भी था और झूठ भी था। कहा, छोड़ना चाहता हूँ, सबसे पहले क्या छोड़ूँ? सुना वह वाक़या? कहा, झूठ छोड़ दो। एक दिन झूठ छुटा, अगले दिन शराब छुट गई, तीसरे दिन जिना भी छुट गया। तो ये मुराद है इससे कि सच की बरकत दुनिया में भी इज़्ज़त और इफ़्फ़त की सूरत में आती है, और सच बोलने की वजह से बंदा गुनाहों से महफूज होता है और इससे आखिरत में भी कामयाबी इसका मुकद्दर बन जाती है। जबकि झूठ बोलने वाले को ऐसा कोई खौफ नहीं होता, अलबत्ता वो बिला खौफ व ख़तर गुनाह पर गुनाह करता जाता है, फिर इसे छुपाने के लिए झूठ पर झूठ बोलता है, जिससे एक तरफ दुनिया में इसका वक्कार मजरूह होता है क्योंकि बिलाहर हकीकत सामने आ जाती है, और दूसरी तरफ आखिरत में सख्त सज़ा का मुस्तहिक करार पाता है। और इसलिए हमेशा झूठ से बचने और सच्चाई को अपनाने की कोशिश करनी है इंशाल्लाह। ठीक है, तो कितने लोगों को लगता है कि इस पे काम करने की ज़रूरत है? झूठ से बचना है, हर मुमकिन तरीके से झूठ से बचना है। बोले इंशाल्लाह। झूठे ड्रामे, झूठी फिल्में, झूठे नावल पढ़ने चाहिए? क्या मिलता है इससे? झूठी मोहब्बतों के दावे करने चाहिए लोगों से? आप देखिए, बहुत सारे लोग जो है ना, वो ज़िंदगी में झूठ में जीते हैं। झूठा स्टेटस रखना चाहिए और झूठे स्टेटस लगाने चाहिए, फेसबुक और ट्विटर और स्नैपचैट और व्हाट्सएप पे लोगों को सिर्फ जलाने या दिखाने के लिए झूठी तस्वीरें लगानी चाहिए और झूठी आईडीज़ बनाकर चिट चैट करनी चाहिए, लड़के को लड़की और लड़की को लड़का बनकर ट्रैप करना चाहिए? बस इसी को समझ लें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज़िंदगी में सिर्फ झूठ की बुनियाद पे चलते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, हम सब को अपनी ज़िंदगी से इस झूठ को निकालना है, और अल्लाह ताला आपको मुझे तौफीक दे इस बात की कि जितना ज़्यादा इस पर आप और मैं अपना अमल करते जाएंगे, अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में सुकून देगा। अच्छा, इसके लिए छोटे छोटे बच्चों को आदत डालें। बच्चा बहुत जल्दी झूठ बोलता है, उसको पता नहीं होता ये झूठ है। ये भी मैं आपको बताऊं, हम एकदम उसको झूठ बोलते हो, आग में जाओगे, जुबान काली हो जाएगी, ये भी झूठ। कभी आज तक किसी की जुबान काली होती देखी? माँ कहती है बच्चे को झूठ बोलोगे जुबान काली होगी, तो माँ क्या कर रही है? सबसे पहले तो माँ की काली होनी चाहिए। इसलिए इससे बचने की ज़रूरत है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो ज़िंदगी में इंसान के इस तरीके से बेबरकती ले आते हैं। और मज़े की बात बताऊँ, जिसको कहते हैं ना कंपल्सिव लायर, बिला इरादा झूठ बोलने लगता है बंदा। कुछ लोगों को बात बनानी पड़ती, बातों में बात, झूठे। और इस तरीके की बातें उनकी ज़िंदगी में होती हैं कि वो अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए दूसरे को झूठा करार दे रहे होते हैं। तो नियत कीजिए, हमने झूठ नहीं बोलना। जितना ज़्यादा झूठ से बचेंगे उतना अल्लाह ताला आपको बचाएगा इंशाल्लाह। इसलिए कि ये झूठ 100 गलत दरवाज़े इंसान की ज़िंदगी में खोलता है और इंसान फिर उन चीज़ों में उलझता ही जाता है। और जितना उलझेंगे ना, याद रखिए कि उतना ही आप स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन और तकलीफ़ का शिकार हो जाएंगे। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि झूठ ख़त्म कर दे, आपकी मेरी ज़िंदगी में सच आ जाए। पूरे का पूरा सच होगा तो आप इंशाल्लाह मुतमईन और मसरूर होंगे। ठीक है जी, पूछ लीजिए। देखिए, इनका सवाल है कि ऐसे ड्रामे जिनके साथ सच्ची कहानी सबक आमोज़ है। कुरान में एक बहुत प्यारा मेयार है, शराब शुरू में हराम थी, लोग पानी की तरह पीते थे, अल्लाह ने उसको हराम करार देना था। सबसे पहले जो मेयार दिया गया वो क्या था, किसी को याद आ गई आयत? कुल फीहिमा इस्मुन, लेकिन शराब और जुए में फ़ायदे भी हैं, लेकिन नफ़ुहुमा, नफ़ा उनका थोड़ा है उनके गुनाह से। एक ड्रामे से आपने एक अमल का पॉइंट तो लिया, लेकिन उससे फैशन, गैर महरम औरतों का अच्छा मिलना घुलना, कल्चर ही बदलता है कि ड्रामों वाला कल्चर हमारे घरों में नहीं होता, उसका हमारी ज़िंदगी में क्या असर है, इस पे एक लेक्चर हुआ था, सोशल मीडिया का असर हमारी ज़िंदगी में, जाकर सुनिए। घर टूटते हैं, तलाकें होती हैं, मर्दों को अपने घर की अच्छी बीवियाँ ही नहीं अच्छी लगती, उनको हीरोइनें अच्छी लगती हैं। तो मेरा ख्याल है कि ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए, और मोमिन के पास इतना वक्त ही नहीं होता। इबरत के लिए, नसीहत के लिए कुरान मौजूद है, किस्से मौजूद हैं, कससुल अम्बिया, हज़रत यूसुफ़ का किस्सा, हसनुल कसस, ये पढ़ाई। अभी मैंने रमज़ान में ही बच्चियों के साथ क्लास में जाकर उनको सूरह यूसुफ़ दोबारा कराई, करेक्टर बिल्डिंग में। बच्चियाँ उठती नहीं थी, शदीद तरीन गर्मी कि मैं बेहोश होने वाली हो जाती थी, वो बच्चियाँ नहीं हिलती थी, और ऐसे उनकी आंखों में चमक और इन्जॉय करने का अंदाज़ था। तो टेस्ट डिवेलप कर लें, आपको वो सब कुछ जो उधर से मिलता है वो इधर से भी मिलेगा। और गुना अपनी जगह, कई चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं देखनी होती, वो देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखिए, अब अगला अमल, बिला ज़रूरत किसी के सामने दस्ते सवाल दराज ना करना। हज़रत सोबान रज़ी अल्लाह अन्हो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मन यकफुल ली अल्ला यसलन्ना सशैया अतकफ़ल लहू बिल जन्ना, क़ाल सोबानु अना फ़कान ला यसलू अहदन शैया। कौन है जो मुझे ज़मानत देता है कि वो लोगों से कुछ नहीं मांगेगा, तो मैं इसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। हज़रत सुबहान रज़ी अल्लाह अन्हो ने कहा, मैं, कितना उनको मज़ा आता था ऐसी बातें, नबी के साथ बिल मुशाफा तय कर लेते थे, कहने लगे मैं, फिर वो किसी से कुछ नहीं मांगते थे। ये सही अबू दाऊद की रिवायत है 1643। तो बिला वजह कुछ ना मांगिए। देखिए, जहाँ तक गुजारा होता है अल्लाह के दिए से गुजारा कर लीजिए, लोगों की तरफ नज़रें मत लगाइए। ठीक है, करते हैं नियत। ठीक है, फिर भी इंसान होने के नाते अगर ज़रूरत पड़ गई, अब वो चीज़ ना मांगी तो काम रुक जाएगा, तो ले लीजिए। मसलन आपके घर में प्यास नहीं है और मेहमान आ गए हैं, बाहर से कोई ला नहीं सकता, हमसाए से ले लीजिए दो प्याज, कोई बुरी बात नहीं। कुरान ने तो कहा है, वयमनउनल माउन, सूरह माउन पूरी सूरत एक इस नाम पे है कि घर की ज़रूरत की इस्तेमाल की चीज़ें, लेकिन वापस कर दीजिए। वापस करने में वो बुरा मनाते हैं, तो कभी वो कुछ मांगे तो आप उनको खुले दिल से दीजिए। ये नहीं हो सकता कि दुनिया में रहते हुए आपको मेरी और मुझे आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस लिहाज से अपने आप को देखिए। चलिए, अगला अमल बहुत ही आसान है, और मैंने देखा है कि जहाँ आमाल होते हैं ना, वो आसान होते हैं, जो अमल के अंदर अपने ज़ात में तब्दीलियाँ पैदा करनी हो वो अमल मुश्किल है। तो ये अमल क्या है, अज़ान का जवाब देना। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है, रसूलुल्लाह ने फ़रमाया, इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िनु अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, फ़क़ाल अहदुकुम अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, सुम्मा क़ाल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु, क़ाल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु, सुम्मा क़ाल अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. آپ نے دیکھا پوری اذان کے جواب میں وہی لفظ سوائے حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے. اس کے جواب میں کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. کیوں؟ بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو بڑی ناگوار بات پہ پڑھتے ہیں، ہم تو ہمیشہ ناپسندیدہ چیز پہ یہ پڑھتے ہیں. نہیں نہیں کوئی طاقت مگر اللہ کی. کہا جا رہا ہے حی علی الصلاح، نماز کی طرف آؤ، تو آپ آگے سے کہتے ہیں اللہ کی طاقت کے سوا طاقت نہیں، مراد یہ کہ اللہ چاہے گا تو میں ضرور آؤں گا. ٹھیک ہے، تو یہ کلمات کہنے والے کو جنت میں داخلے کی خوشخبری دی گئی، اور یہ روایت صحیح مسلم 385 کی تھی. اسی طرح بخاری 611 اور مسلم 383 میں آتا ہے، آپ نے فرمایا جب تم اذان سنو تو اسی طرح کہو جیسے مؤذن کہتا ہے، تو جواب دینا چاہیے. اور ایک سے زیادہ اذانیں ہوں تو کیا کریں، جیسے پاکستان میں ایک اذان جو سب سے پہلے ہوتی ہے اس کا جواب دے لیجئے. ہر اذان کا جواب دینا ضروری نہیں اور ممکن بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، پاکستان میں رہتے ہوئے تو آپ کو یہ ایک چیز شاید احساس نہ ہو، لیکن باہر والوں کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے کہ اذان کی آواز آ رہی ہے. باہر کے ملکوں میں اذان کی آواز نہیں آتی، ہاں گھروں میں اگر آپ نے فون میں یا گھڑیوں میں الارم لگائے ہوں تو یہ الگ بات ہے. پھر آگے دیکھیے، مسجد میں ہی رہائش اختیار کر لینا. اللہ اکبر، یہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کے دل مسجدوں میں لگتے ہیں. کیسے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا المسجد بیت کل تقی و تکفل اللہ لمن کان المسجد بیتہ بالروح والرحمہ والجواز علی صراط الی رضوان اللہ الی الجنہ. مسجد ہر متقی اور پرہیزگار کا گھر ہے، اور جس کا گھر مسجد ہو اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کرنے اور اس پر رحمت اور شفقت کرنے اور اسے اپنی رضامندی اور جنت کی طرف پل صراط عبور کرنے کا ذمہ لیا ہے. ہائی لائٹ کریں، یہ حدیث آپ نے اپنے مردوں کو سنانی ہے، گھر میں جو بھی ہیں بیٹے بھائی باپ شوہر، یہ حدیث ان کو سنائیے. اور اس میں سند بھی اس کی اچھی ہے، ترغیب اور ترہیب میں بھی 222-221 میں ہے. اور ناصر الدین البانی کہتے ہیں کہ یہ لفظ کہ مسجد ہر متقی کا گھر ہے یہ معتبر ہے، یعنی اتنی بات ہی کافی ہے، باقی الفاظ ضعیف ہے. مسجدوں میں دل لگائیے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسجد میں جا کے رہنا، دیکھیے جس کا دل مسجد میں ہوگا وہ باہر بھی ہوگا تو وہ مسجد میں ہی رہے گا. بہت بڑے اعمال میں سے یہ عمل ہے کہ بندہ نیکی کرے اور فالتو وقت مسجد میں گزارے. آپ دیکھیں نا کہ ہم باہر جاتے ہیں کام کے لیے جاتے ہیں نا، جب ہم کہیں نہیں جاتے تو ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں نا. بس کہہ لیجئے کہ مسجد سے ایسے دل لگے، کام کیا واپس مسجد، آرام کیا واپس مسجد، روزی روٹی کمائی بچوں کی باقی وقت مسجد، یعنی مسجد ول بی دیئر سیکنڈ ہوم. پاکستان میں تو اس کا تصور بھی نہیں ہے، یہاں مسجدوں کی عزت نہیں ہے الا ماشاءاللہ. یہاں کی اماموں کی کیا عزت ہے، مؤذنوں کی کیا عزت ہے؟ کل میں کسی کا کلپ سن رہی تھی تو وہ چہرے مورے سے مؤذن یا معلم لگ رہے تھے، کہہ رہے تھے میری 700 روپے تنخواہ تھی ایک وقت تھا، پھر 2000 کہیں بتا دی. تو میں سوچ رہی تھی آج 700، اور کہتے تھے 700 مجھے مسجد سے ملتے تھے وہ میرا کرایہ لگ جاتا تھا. آج کسی بڑی یونیورسٹی میں 700 روپے پہ کوئی لیکچرر لگتا ہے؟ باہر کے ملکوں میں ابھی بھی مسجدوں کی عزت ہے. جو مسجدوں میں جاتے، مسجدوں کو ٹیک کیئر کرتے، ان کی معاشرے میں عزت ہے. ٹھیک ہے، ایک دوسری ایکسٹریم میں جو مسجد جاتی نہیں ان کو ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لیکن عام مسلمان مسجد میں جانا، ہم عورتیں مغرب عشاء مسجد میں، افطاریاں ساری مسجد میں، بچوں کے نائٹ پروگرام فیملی نائٹ مسجد میں، جو بالکل پردیسی ہوتے ہیں ایک ہسبینڈ وائف ہیں بچہ چھوٹا، روز شام کو مسجد چلے جاتے ہیں، کیونکہ کسی کے گھر روز نہیں جا سکتے آپ، کوئی بلائے کچھ بتائے پھر تکلفات. آپ مسجد میں جائیے بیٹھیے بچے خوش، باہر مسجدوں کے लॉन्स हैं, उसमें खिलौने हैं, अंदर मस्जिदों में बच्चों के लिए गेम्स होती हैं, तो मस्जिद को आबाद करना है। जितनी हमारी मस्जिदें खूबसूरत हों, और अल्लाह की बनाए एक आध मस्जिदों में जाने का इत्तेफाक हुआ, मैं कहती थी ऐसे बाथरूम अगर हमारे घरों में हों तो हम कभी वॉशरूम यूज़ ना करें। ख़ास तौर पे जो चीज़ मैंने देखी है पाकिस्तान में, मस्जिदों के वॉशरूम बड़े गंदे हैं, फफूंदियाँ लगी हुई, स्मेल। इससे बचिए, कम से कम आपके घर से एक दर्जा मस्जिद का बढ़ के होना चाहिए, वरना आपके बच्चे क्यों जाएं? आज भी जो अच्छे स्कूलों में जाते हैं उनके स्कूलों में एसी लगे हुए हैं, वहाँ आज भी साफ़ सुथरे बाथरूम हैं, उनको लगेगा ये अच्छी चीज़ है। और जो मस्जिदों में जाते हैं उधर जाके देखिए तो छप छप करता हुआ पानी फ्लोर पे, और जो साफ़ कर रहे होते हैं वो गंदे कपड़ों से मस्जिद साफ़ कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ पे भी थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। हम पढ़ाई बराए पढ़ाई नहीं कर रहे, हम अपने लिए इस चीज़ को मेयार बना रहे हैं कि हमने इस टॉपिक को पढ़कर अपनी और अपने इर्द गिर्द वाली चीज़ों की इसलाह करनी है। मौका मिले तो जाकर अपने इर्द गिर्द की मस्जिदों की सफाई का अहतमाम करें। कहते कौन करे, देखिए मासी को घर के लिए रखा हुआ ना, आपका घर माशाल्लाह बड़ा है, 5-6 बाथरूम है, सब कुछ है, आप 1,000 ज़्यादा दें, उसे कहना जाओ ये साथ वाली मस्जिद को भी रोज़ साफ़ करो। ये जगह जिसमें हम बैठे हैं अगर हम इसको साफ़ करेंगे तो क्या हमें बुरा लगेगा? बेइज्जती की बात है। ऐसी जगह जहाँ इतने लोग आकर फ़ायदा उठाएं, वो तो हर रोज़ अगर बारियाँ लगा ली जाएँ तो ये जगह चमकने लगें। कभी भी याद रखें ऐसी जगहों को गंदा, बदबूदार, नमक मर्च मसालों की बू से मिचा हुआ ऐसा नहीं रखना चाहिए, वरना नाजुक मिजाज लोगों के दिमाग पर इस चीज़ से बोझ आता है। पहले दिन अच्छा नहीं लगता और आए तो वहाँ गंदगी और पसीने की स्मेल्स, और आजकल जब घर जाएं वापस जहाँ से भी हो गए सीधा शावर में जाएं। 2 जोड़े 3 जोड़े हैं घर में मलमल लॉन जो भी घर पहनने के, एक धोएं एक पहने, पसीने वाले कपड़े फौरन जाकर उतारिए। जब पसीना सूख जाए और एसी में बैठे, अल्लाह की पनाह जो बदबू फिर कपड़ों में होती है, सांस नहीं लिया जाता, गले नहीं मिला जाता ऐसे लोगों से। पानी में जाकर उसको फेंके, बाथरूम में गए सिंक में कपड़े रखें जाकर, ऊपर से टूटी खोल दें, हल्का सा साबुन वही शायर शावर में या जो भी बॉडी वॉश है 2-3 कतरे डालें, उसको मसलें, पानी में डालें, उसको खंगाल के हैंगर पर डाल दें, खुद पानी डाल के दूसरा पतला सा जोड़ा पहन लें। ये सूख जाएगा, दोबारा अगर फिर किसी वजह से आपको शाम को निकलना पड़ा, जाइए फिर इस कपड़ों में बाहर गए हैं वापस आए दूसरा सूखा होगा। आजकल के मौसम में अपने आप को साफ ना रखना अपने साथ वालों को अजियत में डालना, और स्पेशली जो मर्द मस्जिदों में जाते हैं यूं सफ़ें बनती हैं ना, पसीना कितना आता है, आप लोग भी यहाँ बैठते हैं तो साथ साथ बैठते हैं ना, तो हमेशा अपनी इन चीज़ों को देखें। दीन खूबसूरती चाहता है, दीन सफाई चाहता है। आपका यूनिफॉर्म है, आपका स्काफ है, इसको रोज़ धोइए, कुछ नहीं होगा, सादे पानी से भी मैल निकल जाता है, कोई बहुत ज़्यादा हमें अहतमाम की ज़रूरत नहीं होती, धोते ही झाड़ के फैला लीजिए, इस्तरी की भी ज़रूरत नहीं होती। तो अल्लाह से दुआ है कि हम दीन के खूबसूरत नमूने बने, हम दीन के नाम पे लोगों को दीन से दूर ना करें। ठीक है, अगला अमल भी मस्जिद से मुतल्लिक है, और वो क्या है, मस्जिद की तरफ जाना। हज़रत अबू मूसा अशरी से मरवी है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, मन गदा इलल मस्जिदी व राह अदल्लाहु लहू नुज़ुलहु मिनल जन्नती कुल्लमा गदा औ राहा। जो शख्स सुबह और शाम को मस्जिद की तरफ गया, अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत में मेहमान नवाजी का सामान हर मरतबा तैयार कर देते हैं जब भी वो सुबह या शाम के वक्त गया। ये बुखारी की रिवायत है 262 और मुस्लिम 669। दो दो दफ़ा मस्जिद जा रहे हैं, अल्लाह हर दफ़ा आपकी खातिर कर रहे हैं, अल्लाह नहीं थकता, उसके पास बहुत कुछ है, वो आपको ये सब कुछ दे सकता है जो आपकी तलब हो और जो आपकी तलब ना हो। ज़रूरत इस बात की कि हम दिल तो लगा कर देखें अल्लाह के रस्तों में। फिर आप देखिए नमाज की पाबंदी वक्त के साथ, मस्जिद में जाना वक्त पे फजीलत वाला अमल है। जो शख्स अपने घर में वज़ू करे फिर मस्जिद में जाए, चल कर जाए, कोई फ़र्ज़ अदा करे, तो अल्लाह एक एक कदम पर एक एक गुनाह मिटाता है और दर्जात बुलंद करता है। ये सही मुस्लिम की रिवायत है 666 और इब्ने हब्बान में 2044। اسی طرح ہم نے رمضان میں ایک ٹاپک کیا ہے، جنت میں جانے والے وظائف، گناہوں کو مٹانے والے اعمال، یہ دو بکس کی ہم نے، تو اس میں بھی یہ بہت ساری روایات موجود تھیں کہ مسجد میں جانے کے لیے جب قدم گھر سے نکلتے ہیں تو گناہ جھڑتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے آپ ادھر آتے ہیں، اس میں بھی اجر ملتا ہوگا؟ کیسے نہیں ملے گا؟ آپ کے لیے تو اور خوشخبری ہیں، فرشتے آپ کے راستوں میں کارپٹ بچھاتے ہیں. کسی کو راستے میں دکھا تھا کارپٹ؟ ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ. پھر آپ دیکھیں مچھلیاں آپ کے لیے اس وقت دعائیں کر رہی ہیں، پرندے آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، فرشتے اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیے ہیں جو خالی جگہوں کو گھیر کے بیٹھے. ابھی یہ مجلس ختم ہوگی وہ اوپر جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کے پیغامات لے کر جائیں گے، جو آپ نے مانگا، جو آپ چاہتے تھے. اور کیا چاہیے؟ دیکھیے دنیا میں اور ہے کیا؟ لوگ تین تین گھنٹے بیٹھ کر فلم دیکھتے ہیں، کیا ملتا ہے ان پر؟ ریگریٹ، افسوس، ٹائم کلنگ. وی ڈونٹ ہیو ٹائم ٹو کل. جیسے قتل کرنے کا وقت نہیں ہے نا، اس طرح ٹائم کو قتل کرنے کا بھی وقت نہیں ہے. ہمارے پاس اتنی لمیٹڈ زندگی ہے. آپ دیکھیے کہ اگر ابھی کوئی بینک اناؤنس کرے ایک گھنٹے کے لیے لاکرز کھول دیے، آئیے جو لینا لے جائیے، کوئی سوئے گا؟ ٹی وی دیکھے گا؟ فلمیں دیکھے گا؟ بازار جائے گا؟ رائڈ کا رونا روئے گا؟ مجبوریوں کا نام لے گا؟ چل پڑے گا رستے میں، کوئی ملے گی سواری لے لوں گی میں، وہاں پہنچوں کیونکہ میرے جانے تک خزانہ نہ خالی ہو. تو اللہ نے آپ کے میرے لیے علم کے رستوں میں اتنے خزانے رکھے ہوئے ہیں، لیکن ہم اس پہ توجہ کم دیتے ہیں. آگے دیکھیے، مسلسل 40 نمازیں با جماعت تکبیر اولا کے ساتھ ادا کرنا. ساری باتیں واضح ہوں گی. تکبیر اولا کے جو شروع میں تکبیر ہوتی ہے، مطلب جماعت شروع ہونے سے پہلے مسجد میں موجود ہو، کوئی 40 نمازیں اس طرح کی پڑھ لے، جنت اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیں گے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی للہ 40 یوماً فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی کتبت له براءتان، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق. اس حدیث کو بھی یاد کیجئے، بڑی پیاری روایت ہے. جس شخص نے رضا الہی کی خاطر 40 دن با جماعت نماز ادا کی اور تکبیر اولی حاصل کی، تو اس کے لیے دو چیزوں سے برات لکھ دی جاتی ہے، ایک آتش جہنم سے اور دوسری نفاق سے برات لکھ دی جاتی ہے. یہ حسن درجے کی روایت ہے، جامع صغیر کی 6365 اور ترمذی میں 241 میں. تو کوشش کریں گے آپ لوگ بھی یہ بات اٹھائیے کہ ہمیں مسجدوں کو عورتوں کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دی جائے. ہمارے اس ملک میں بہت سارے لوگ عورتوں کا مسجد میں جانا پسند نہیں کرتے، بازاروں میں جانے سے کوئی نہیں روک سکا، مالز عورتوں پہ کھلے ہیں، مسجدیں بند ہیں. اللہ ہماری اصلاح فرما دے. آگے پھر مسجد سے متعلق ہے، اندھیرے میں مسجد کی طرف چل کر جانا، یعنی فجر کی نماز، عشاء کی نماز. حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ. اندھیروں میں مساجد کی طرف بہت زیادہ چل کر جانے والوں کو روز قیامت مکمل نور کی بشارت دے دو. سبحان اللہ. ترمذی کی روایت صحیح درجے کی 223 اور ابن ماجہ 781 نمبر کی روایت ہے. اور سورۃ حدید آیت 12 میں ہم پڑھتے ہیں نا، یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسع نورہم بین ایدیہم و بایمانہم. قیامت کے دن تو دیکھے گا کہ مومن مردوں اور عورتوں کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا. دراصل یہ وہ وقت ہوگا جب لوگ پل صراط پار کریں گے. اس وقت اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ان کے ایمان اور نیک اعمال کے باوجود مسجد میں پہنچنا وغیرہ، اس کے بدلے میں ایسا نور دیں گے جس میں روشنی ہوگی اور وہ اس میں آسانی سے جنت کا راستہ پائیں گے. کبھی گھر میں بجلی چلی جائے تو کیسا لگتا ہے؟ اپنے گھر میں ٹھوکریں لگ رہی ہوتی ہیں، سارا دن چلتے ہیں وہاں، لیکن کبھی پلنگ کے پائے کو ٹکرائیں گے، کبھی چارپائی سے، کبھی کرسی سے، جتنا فرنیچر گھر میں زیادہ اتنی ٹھوکریں لگتی ہے. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ سوچیے ذرا. پل صراط تو اتنا باریک، اندھیرے میں سلپری، کلوب، آنکڑے، और उसके ऊपर से आपने मैंने गुजरना है, तो क्या आपको मुझे नूर की ज़रूरत नहीं? ये कुरान का नूर है जो वहाँ रोशनियाँ बनेगा। अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में इसकी कदर दे और इस कुरान के नूर को फैलाने की हमें तौफीक अता फरमाए।